نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربما يود الذين كفروا، 14 پارہ ہے اور ہم سورة ہجر کے آغاز سے شروع کریں گے جو 13 پارے کے آخر میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی مقررہ نوشتہ تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 5. اس کا عنوان ہے ان کو مزے اڑانے دو. بڑا زبردست قسم کا آغاز ہے سورت کا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی حسرتوں کا ذکر کیا کہ آج دنیا میں موج مستی جن کا کام ہے، جن کو خواہشیں ہی پسند ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کس حسرت کا شکار ہوں گے کہ وہاں جا کے پھر مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا دیکھ کر ان کی سزاؤں کو بھگت کر، اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیتا دیکھ کر، خود پیاس کی شدت سے تڑپتا ہوا دیکھ کر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ہائی لائٹ کر لیجیے آیت نمبر 2 کو، اور اس آیت کو سننے کے بعد ہم سب پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہم شکر گزاری کے لیے 2 نفل پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں. اللہ نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے ہوئے نہیں ہوتے. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا بسا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یہ تھی آیت نمبر 6 سے 15، 6 to 15. اس کا عنوان ہے اس قرآن کو نافرمانوں کے دل میں سلاخ کی طرح گھساتے ہیں. قرآن پاک کو سننے کے بعد 2 طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. ایک پیچھے گزر گیا سورۃ الرعد میں، کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کو سن کے ان کا دل اطمینان میں آتا ہے، مطمئن، سکون، لگتا ہے یہی ہے میرے سارے سوالوں کا جواب، اور بیٹھنا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں، اور گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اللہ کے کلام کی مجلس میں یا اس موقع پہ بے چین ہونے لگتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں. وہ کیوں؟ کہ وہ قرآن ان کی زندگی کے اوپر ایک چوٹ بن کے گرتا ہے. یہ یہاں والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر اس دور کے لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی زندگی سے مختلف کی ہوتی ہے. جب اللہ کے کلام کی آیتیں ان کی زندگی پہ اور ان کے رسم و رواج پہ اور ان کے طور طریقوں پہ چوٹ ڈالتی ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. سننا چھوڑنے سے کیا ہوگا، بات تو ماننے کی ہے. آیت ہائی لائٹ کریں گے ہم، آیت نمبر 12 ہے. کذالک نسلکہ فی قلوبہ المجرمین، ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں سلاخ کی طرح ڈالتے ہیں. میں اس آیت کو پڑھتی تو میرے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ جیسے روئی کا گولا ہے اور گرم گرم لوہے کی سلاخ کو اس روئی کے گولے میں ڈالنا چاہے، تب دیکھیں گے کہ اس کے ریشے جل کے اس راکھ کے ساتھ آتے ہیں. یہ وہ بے چینی کی کیفیت ہے جو انسان کے دلوں میں آتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے جن کی زندگی اس کلام سے بڑی دور ہوتی ہے. वलकद जालना फिस समाई बुरूजम वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया है और इसे हर मर्दूत शैतान से महफूज रखा है। हम अगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ शोला लगने लगता है। और जमीन को हमने फैला दिया है और इस पर अटल यानी पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने हर चीज एक मुय्यन मिकदार से उगा दी, और इसी में हमने तुम्हारी रोजियां बना दी हैं और जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो। और जितनी भी चीजें हैं इन सब के खजाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज को इसके मुकर्रर अंदाजे से उतारते हैं। वरसलना रियाह लवाकिह, और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसा कर वो तुम्हें पिलाते हैं और तुम इसका जखीरा करने वाले नहीं हो। फइन्ना लनहनु नुहयी व नुमीत व नहनुल वारिसून, हम ही जिंदा करते और मारते हैं और हम ही बिलाखिर वारिस हैं। और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में है। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। ये थी आयत नंबर 16 से 25, 16 to 25। इसका उन्वान लिखेंगे सितारे रास्ता दिखाने वाले। इन आयत में अल्लाह ताला ने कायनात की कुछ चीजों के तस्करे के अंदर सितारों की वजह तख्लीक भी पेश की। एक वजह क्या है? ज़य्यन्ना लिन्नाज़िरीन, हमने इसको खूबसूरत कर दिया देखने वालों के लिए। देखा जाए तो आसमान पे सिल्वर कलर के सितारों का चिपकना इंसान को इस बात की खबर देते हैं कि उनका रब उनसे कितनी मोहब्बत करता है। जिस तरह आसमानों के सितारे चमकते हैं ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह कुछ दुनिया के स्टार्स भी होते हैं जो लोगों के रास्ते भुला देते हैं। यही फर्क है। आसमानों पर निगाहें लगाने वाले कायनात से भी सबक सीख लेते हैं, और इससे निगाहें हटाने वाले बस ऐसे सितारों के पीछे लगते हैं कि जो उनसे फिर उनकी सबसे कीमती मता भी छीन लेते हैं जो उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। अब आगे इंसान को उसकी तख्लीक की कुछ कहानी बताई जा रही है। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाले मिन हमइम मसनून। इसको सुनते वक्त आपने एक चीज तसव्वुर में रखनी है, और वो क्या? वो वक्त जब आप अपने आप को सजाते संवारते हैं, खास तौर पे फिर जब हद से गुजर जाते हैं और जब लोग हमारी तारीफ करते हैं। चाहे हमने उस वक्त हदों को पामाल किया हो, तो सोचिएगा कि हमारी औकात क्या है। तर्जमे पे बहुत गौर करना है। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जरा देखिए तारुफ किन लफ्जों में हो रहा है हमारा। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सबके सपने सजदा कर लिया, मगर इबलीस ने ना किया। इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तीसरी दफा ये लफ्ज आ रहा है। फरमाया अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क्यामत के दिन तक। कहने लगा ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक की ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। फरमाया कि अच्छा, तो इनमें से जिन्हें मोहलत मिली है रोजे मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाहों को खूबसूरत कर दूंगा और इन सबको बहकाऊंगा भी, सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखिब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ कि हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। इन इबादी लैसलक अलैहिम सुल्तानन इल्ला मन इत्तबअक मिनल गाबीन, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे, इनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वो वहां से कभी निकाले जाएंगे। नबी वादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। वन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत दर्दनाक हैं। ये थी आयत नंबर 26 से 50, 26 से 50। इसका उन्वान है, ए इंसान अपनी असल को ना भूल। दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो लोग पूछते हैं ये कहाँ से बनी। आप जेवर पहनते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा ये असली है कि नकली, ये सोने का है या ये लोहे का है। जो असल चीज़ होती है ना वो बड़ी कीमती होती है, उसी की कीमत है। आप चमकता हुआ जेवर पहन के खुश हो सकते हैं, लेकिन उस जेवर की कीमत कब पता चलेगी? जब आप उसको बाजार में ले जाके बेचेंगे। सोना होगा ना, पुराना भी हो जाएगा तो उसके पैसे मिल जाएंगे, और आर्टिफिशियल फेक ज्वेलरी होगी वो कितनी भी चमकती हुई हो, वो कहेंगे इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। इंसान अपनी असल से पहचाना जाता है। अल्लाह ने इंसान को खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया, कीचड़ दलदल, लेकिन कितनी कदर दी, कितनी अहमियत दी कि उसको जन्नत का राही बना दिया। जो इंसान अपनी इस मट्टी और कंकर को अल्लाह के हाथ में बेच के वैसे ही जीता है जैसा जीने का हक है, तो अल्लाह इस नकली इंसान को कल जन्नत में असली सोने का बना देगा, और जिसने इसे ऑपोजिट किया उसका अंजाम वही है जो हम पढ़ चुके। कभी आप सोचते हैं इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मट्टी से क्यों पैदा किया? सोने से बना देता, क्या मुश्किल था उसके लिए? बहुत आसान था। आज भी पहाड़ों की गोद में जितना सोना है वो सब इंसानों में ढाल दिया जाता है, उसके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन पता है क्यों नहीं बनाया? कि फिर तो शायद इंसान ज़मीन पे भी ना पाँव रखता। हो, मैं सोने का हूँ। आज मट्टी का गंदा बदबूदार इंसान दिन में 2-3 बार ऐसी हालत में होता है कि वो अपनी बदबू खुद ना सूंघ सके। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर हो, कुछ ऐसे काम है जो उसको खुद ही करने पड़ते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? सिर्फ ये कज़ाए हाजत या रेस्ट रूम में जाने की कैफियत ही ख़त्म कर दी जाती, लेकिन क्यों कि दिन में इंसान को कुछ वक्त बताया जाता है ये है तेरी औकात, बड़ा बनता है, तेरी गर्दन अकड़ी हुई है, तुझे अल्लाह का हुक्म पसंद नहीं। तू कहता है हूँ, देखेंगे, जरा आज का वक्त तो गुजर जाए, जरा आज तो वाह वाह करवा लें, जरा आज तो इस दुनिया में बड़े बन जाए। असल इंसान की औकात ये है। फिर ऐसे लोगों से जब इंसान डरे, ऐसे लोगों के लिए इतने प्यारे रब को नाराज करे, तो जरा सोचिए फिर ऐसे शख्स की क्या मिसाल हो सकती है। और ऐसे मिट्टी के बने हुए इंसान को कल जन्नत में बसा दे, इसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत दुनिया में है। अल्लाह ने दोनों इंतहाएं बता दी, नबी वादी अन्नी अनल गफूर रहीम, और इसके साथ वह अन्ना अजाबी हुवल अजीजुल अलीम, अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा है कि अगर इसका हाल काफिरों और फाजरों पे खुल जाए तो वो भी जन्नत की उम्मीद लगा लें। क्या ठीक है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन वो है बड़ा रहम वाला, वो माफ कर देगा। और इसके बरक्स अगर अल्लाह के जब्बार और कहार होने का पता मोमिनों को लग जाए तो कभी जन्नत की उम्मीद ना रखें। तो बात यह है कि अल्लाह की दोनों सिफात एक्सट्रीम पे हैं। ये हमारा हाल है कि हम अल्लाह से किस चीज़ की तवक्को रखें, और जो दुनिया में करेंगे अल्लाह का मामला हमारे साथ वैसा ही होगा। वनब्बिहुम अन दईफ़ इब्राहिम, इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फरजंद की बशारत देते हैं। कहा क्या, इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब्बे ताला की रहमत से नाउम्मीद तो सिर्फ गुम और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं मगर खानदाने लूत के, हम इन सबको जरूर बचा लेंगे सिवाय लूत की बीवी के, हमने इसे रुकने और बाकी रहने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक और शुबा कर रहे थे। हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने इनकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। बस सूरज निकलते निकलते इन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाहिर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। इन नफीजा लिकला या तिल्लिल मुतवस्मीन, बिलाशुबा बसीरत रखने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है, और इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये थी आयत नंबर 51 से 77, 51 से 77। इसका उन्वान है नफ्स की ख्वाहिश पे लगने का इंजाम। पीछे हम पढ़ चुके इन कौमों के हालात। कौम लूत होमोसेक्सुअल थी, ख्वाहिश परस्त हो गए, और ख्वाहिश परस्त इंसान किसी की नहीं सुनता, और ऐसी मस्ती फिर इंसान को अल्लाह की बात सुनने से दूर कर देती है। यहाँ एक आयत हाईलाइट करेंगे और वो है आयत नंबर 72, लउमरु का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महोन, तेरी जान की कसम वो अपनी सरमस्ती में मदहोश थे। यही है वो कैफियत जो इंसान को गुनाहों पे माइल करती है, और ऐसी ही चीज इंसान को फिर अपने सामने बुराई को बुरा देखकर भी उसमें कूदने पे मजबूर करती है। दुआ करें कि ये मस्ती उतर जाए। ये गुनाहों का नशा होता है जो इंसान से नहीं उतरता, और फिर इसको अल्लाह उतारने के लिए लोगों को जहन्नुम में डालेगा, ताकि फिर वहां उनको पता चले कि लज्जत के पीछे लगने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है। इसके बाद अब उस कौम का नाम है जिस नाम पे ये सूरत अल हिजर है। वलकत कज्जब असहाबुल हिजरिल मुरसलीन, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। ये कौम सालेह यानी कौम समूद का दूसरा नाम है। और हमने इनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूगरदानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर इन्हें भी सुबह होते हुए चिंघाड़ ने आ दबोचा। बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फायदा न दिया। हमने आसमानों और जमीन को और इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ ही पैदा फरमाया, और क्यामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्नो खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको सात आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं, और अजीम कुरान भी दिया है। आप हरगिज अपनी नजरें उस चीज की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना उन पर आप अफसोस करें, और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें, और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सबसे जरूर बास बुरस करेंगे हर उस चीज की जो वो करते थे। बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए, और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मसखरापन करते हैं इनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है, लिहाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। ये थी आयत नंबर 78 से 99, 78 से 99। इनका उन्वान है हमने आपको जो नेमत दी है उसकी मौजूदगी में दुनिया की चमक दमक से मुतासिर ना हो। बेसिकली ये एक पैगाम था और इसी को हाईलाइट करेंगे आप। आयत नंबर 88 में है, ला तमुद्दन आई नई का इलामा मत तो ना भी अस्वाजम मिन हम। असल बात ये है कि जब अल्लाह किसी को अपना कलाम दे देता है ना, फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ अट्रैक्ट करती ही नहीं, इस ख्याल से कि कहीं करे। अल्लाह ने कहा कि मत देखो, हमने आपको जो दिया है वो सबम मिनल मसानी है। ये सात दोहराई जाने वाली आयतें हैं और वो कौन सी? सूरत अल फातिहा। दुनिया में आप देखिए कि किसी को कुछ मिल भी जाता है ना तो हसरत रहती है, फिर भी हर एक को देख लीजिए, हम अपने आप को ही देख लें, एक चीज मिल जाती है ना तो क्या मुतमईन हो जाते हैं? नहीं, उसके बाद किसी दूसरे को उससे अच्छा जेवर पहना देखेंगे तो दिल चाहता है ये भी हो, फिर वो मिल जाता है, फिर कोई और चीज दिखती है, एक घर से निकल के दूसरे घर में आते हैं, दिल चाहता है और ले लें। सिर्फ एक चीज है जो इंसान की निगाहों को झुकाती है और वो क्या है? कि उसको अल्लाह दीन की दौलत दे दे, कुरान की दौलत दे। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को एक खूबसूरत सबक दे रहे हैं इन आयतों में कि देखो, तुम दूसरों की चमक दमक को मत देखो। दूसरों के पास जो है ना, ये सब आर्टिफिशियल है। सोना भी यहाँ का आर्टिफिशियल है, क्योंकि कल आखिरत के बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं। जो वक्त, जो मेहनत, जो तवानाइयाँ तुम्हारी इस दुनिया को पाने के लिए लगती थी, अब वो वक्त, वो मेहनत और वो तवानाइयाँ इस किताब और इस कलाम के लिए लगा दो ताकि अल्लाह तुम्हें दूसरों से बेनियाज कर दे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब बंदे को अल्लाह के वादों का यकीन आता है ना, जब सोने चांदी हीरे मोती कुछ कदर नहीं रहती, तो फिर अल्लाह जन्नत की खुशखबरियाँ दिलाता है। कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान ये सोच के खुश नहीं होता कि अच्छा जन्नत में सोना चांदी होगा, इट्स ओके, ये कौन सी बड़ी बात है, हो जाए, यानी वो तड़प नहीं रहती, हो जाएगा, अच्छी बात है, ख्वाहिश है, मिल जाएगा, लेकिन वो दिल से निकल जाती है चीज। इसके बरक्स फिर ख्वाहिश क्या रहती है? कि अल्लाह तू जन्नत में अपना दीदार कराना, अपनी रजा करवाना। और फिर एक वक्त आता है कि इंसान को इस किताब से इतना गहरा शगफ लग जाता है कि वो ये सोचता है कि मैं जन्नत में जाके इस किताब को पाऊंगा। पता नहीं आप भी सोचते होंगे, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि पता नहीं जन्नत में कुरान होगा, हम जन्नत में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो लज्जत इस कुरान की महफिल में आती है वो तो दुनिया की किसी पार्टी में नहीं आती, किसी महफिल में नहीं आती। अल्लाह ताला ने कहा है वहां तुम जो चाहोगे मिलेगा, तो मैं तो एक दफा इस कुरान को जरूर मांगूंगी कि अल्लाह ताला ये कितनी प्यारी चीज थी कि जो दुनिया में रहते हुए इंसान को जन्नत के बागों की सैर करा दे, इंसान को कोई गम गम ना लगे, कोई बीमारी बीमारी ना लगे, कोई दुख दुख ना लगे, तो वो चीज कितनी प्यारी थी। और पता नहीं जन्नत में कैसा होगा। हदीस तो आती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जन्नत में कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि उनका लहन है ना, उनकी मेलोडियस वॉइस थी, वो गाएंगे।